ये ऐसी कोई खास असनाद नहीं है जिनकी वजह से टारगेट क्लिंग की जाए किसी?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
हो सकता है किसी और के चक्कर में निशाने पर आ गया हो।
हर टारगेट किलिंग में हमेशा दो हदफ होते हैं, एक को हटाना और दूसरों को डराना।
वाकई सही निशाना नहीं लगा सके, लेकिन फरेब क्यों?
हमेशा हरीफ के होश और जकावत के बारे में सोचते हैं।
मैं अब क्या करूं?
आला ओहदेदारान की मंजूरी होनी चाहिए।
अगर आला ओहदेदारान मेरी दरखास्त आपके पास भेजें और आपकी राय लें तो आप मेरी एप्लीकेशन पर क्या लिखेंगी?
अगर मैं आपकी दरख्वास्त पर लिख दूं कि मंजूर है तो क्या आपकी बेगम की मुश्किल पेश नहीं आएगी?
ये एक खत भी है।
कैसा खत है?
2 महीने कबल डायरेक्टर साहब को लिखा, बराह रास्त अपने जिम्मे मौजूद काम की तरफ इशारा है और दरख्वास्त है कि ऐसी जगह ट्रांसफर मिल जाए जहां बेहतर और ज्यादा काम अंजाम दे सके।
जहां ट्रांसफर होना चाहता है उस जगह पता है?
हमें ऐसी इत्तला मिली है कि आपको कत्ल करने का मंसूबा है।
तुम पूरा मामला इन लड़कों को समझा चुके हो?
जी हाँ साथियों, अपना काम शुरू कर दिया है।
देखो लड़को, ये केस मुमकिन है देखने मामूली नजर आए, लेकिन इसके अंदर
बड़े कबूल कर लिया।
नहीं, हमने उन पर कोई दबाव नहीं डाला, वो खुद ही इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि उन्हें ये रोल करना।
मुझे बहुत बुरी इत्तला मिली है।
कैसी बुरी खबर?
वो मेरी ताक में मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं।
Сегодня лучше. Он не поел, поэтому. Желудок не болит и не тошнит. Лекарства этого доктора совершили чудо. Не говорится ничего, чтобы мог от этого рассердиться.
У него рак. Он долго не продержится. Максимум год. Ты должен подумать о своей жизни после Мориса.
Если Морис умрет, я вместе с ним умру. Я не шучу.
Морис.
Ты пина.
Да. Но то, что я говорю, не от того, что я пина. Мы можем не жить с мечтами и сожалениями, если захотим. На самом деле, мы должны убить всех наших врагов и бросить в мощь. одного из них не должны оставить в живых. А наших друзей посоветуем. Закрыть глаза и затыкнуть уши. Ничего не слышали и не видели.
Сказал выйти.
Морис. Хочешь, позову Даниэля, принесет лекарство.
Не надо. Боль не так сильно. Выдержу. Отрезвело?
Рука твоя тяжелая.
Меньше пей, чтобы глупости не говорить.
Я сойду с ума, если не буду пить. Ты что хочешь, чтобы я с ума сошла?
Ты сошла с ума от выпивки несколько минут назад. Из-за алкоголя твои мозги перестали нормально работать. А твои мозги мне нужны. Да, нужны, пока не закончим это дело.
Морис, как ты себя чувствуешь?
Почему пришла?
Нина Крушенко провалилась сквозь землю. Пока не удалось узнать, кто этот иранец. Человек, который давал нам информацию, молчит. А ты хочешь, чтобы я не пила?
Нина Крушенко, где бы ни пряталась, все равно когда-нибудь позвонит тому человеку, с кем она была близка в офисе.
Для нее самый близкий человек был Нуфа.
Тогда надо выяснить, кто был самым близким человеком Нуфа.
Авраам.
Сказал об этом в ту ночь.
Я не думала, что это так важно. Даниэл был другом Нуфама, но он не размышляет так, как Нуфам.
Откуда ты знаешь, что он думает?
Из его слов, поведения.
Алкоголь не дает твоим мозгам нормально работать.
С той ночи я наняла человека, чтобы следить за врагом.
Ты не поняла, что я тебе сказал. Надо было следить за его женой, женой.
Я поняла. Только не думала. Не думала, что это так важно. Этот иранец исчез. Я подумала, что жена не сможет ничем нам помочь.
Не общались до сих пор, пока иранец уехал.
Думаю, их связь временно прекратилась, Морис.
Иди домой. Выпись. Прости себя.
Не сердись.
Заткнись! Иди домой!
Все-таки я на улице.
Не пошла ты мне там.
Она меня не стерпела. Я вышла от нее ночью и всю ночь была на улице. И до сих пор здесь.
Нина, я не могу предложить, чтобы ты пришла к нам. Мы с Кларой поссорились по одному вопросу. Не разговаривает она со мной. Боюсь, что устроит скандал, если ты приедешь.
Авраам, я не хочу идти к тебе домой. Я только немного денег хочу, чтобы поехать в Ачматдин. К двоюродному брату.
И где сейчас?
Я за вашим домом.
5-6 минут принесу.
Хорошо.
Вот. Столько смог найти.
Этого достаточно, чтобы поехать в Ачмятин.
Если ты не сможешь там остаться, то позвони мне, я что-нибудь придумаю.
Если у дверного брата не смогу остаться, то кроме тебя у меня никого нет.
До свидания.
До свидания, Авраам.
आधी क्यों?
पूरी ज्यादा हो जाएगी और ऑफिस में नींद आती रहेगी फिर।
बगैर दवा खाए भी अगर सैयद सालिम दफ्तर पहुंच गया तब भी एक कोने में जाकर सोना ही होगा। कल रात सिर्फ एक घंटा ही सो पाया।
जब आपकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है तो फिर डरने की क्या जरूरत?
तुमको कैसे पता कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है?
वो आपसे झूठ क्यों बोलेंगे?
ताकि मुझे डर ना लगे, मैं आराम से अपनी गाड़ी में सवार होकर दफ्तर जाता रहूं।
बहुत मनफी सोच।
ठीक है, तुम ही मुझे समझाओ, कैसे मुमकिन है कि सिर्फ चंद घंटे के अंदर मेरी ही मॉडल की गाड़ी, बिल्कुल उसी रंग की गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाए? समझाओ जरा।
आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम।
सलाम वालेकुम।
सलाम।
कैसे हो बेटा?
अम्मी, क्या हम स्कूल जाएं?
हाँ बेटा, तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो और अपने स्कूल जा सकते हो। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, डरने की जरूरत नहीं है। जाओ बच्चों आराम से।
खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मिलाद, मरियम, अपने दोस्तों से कुछ नहीं बताना, ठीक है?
मैं तो नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी।
ठीक है,
मैं भी नहीं बताऊंगी।
शाबाश, जाओ। खुदा
फैज।
अपना ख्याल रखना। खुदा फैज। मोहसिन, मैं भी आपके साथ आऊंगी।
अंदर आ जाओ।
मोहित शिशालत, टारगेट किलिंग नेटवर्क का जिम्मेदार और चीफ। आदम वफाज, असिस्टेंट और ऑपरेशनल कमांडर। योहान एलमूत, दहशतगर्दाना उमूर का माहिर और मुसाद का राबेतेकार। इन तीनों की गुफ्तगू नासिर के जरिए ने अपने खुफिया माइक्रोफोन के जरिए जो उसके पास होता है रिकॉर्ड की है। उनकी बातें और बहसें ईरान इसराइल तसादुम के बारे में हैं। योहान एलमूत ने बहुत अहम बातें की हैं। इस एतबार से नहीं कि ये नई बातें हैं, नहीं, बल्कि इस एतबार से कि उनके बारे में किसी तजिए की जरूरत नहीं है, बल्कि बराह रास्त खुफिया अहलकार से सुनी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है किसी और ने बातें नकल नहीं की हैं।
तर्जुमा कीजिए।
क्या इसे साफ कर सकता हूँ?
साफ कर लो।
दिलचस्प बात यह है कि एलमूत ईरान के दाखिली हालात के बारे में मुजाहमत के मौजू पर बात कर रहा है और साइंस और सरवत की बात करता है। मोरिस और मोफाज से कहता है कि ईरानियों को मुख्तलिफ मैदानों में नई टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोकें।
यानी इल्मी शख्सियतों को टारगेट करना और सनअतों में गड़बड़ी फैलाना।
बिल्कुल,
ये तो कोई नई बात नहीं है।
मैंने कहा सबसे अहम बात यह है कि इत्तलात किसी तज्जिए पर मबनी और खाम इत्तलात नहीं है। स्ट्रेटजिक इत्तलात हैं जो एक खुफिया नेटवर्क से हासिल हुई हैं, लिहाजा इसको बड़ी संजीदगी से लेने की जरूरत है।
सरबत को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है?
तुम्हारे सवाल का जवाब खुद एलमूत ने दे दिया है। एक जगह वो कहता है हमारे इसराइली अहबाब ईरानियों की सरबत को कंट्रोल कर सकते हैं।
शायद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और पाबंदियों का मामला है।
अपनी बात के आखिर में एलमूत एक पुराने खौफ के बारे में बात करता है जो इसराइलियों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। ईरान को इलाके के लिए आइडियल नहीं बनने देना है।
ठीक है, वैसे ये हकीकत है कि डर बिलावजह का नहीं होता।
एलमूत कहता है कि मौजूदा दौर में मुज़ाकरात को सबसे बड़ी मुश्किल समझता है। कहता है कि मगरिब और ईरानियों के दरमियान लेन देन और तआवुन नहीं होना चाहिए। अगर तआवुन शुरू हो गया तो सारी दुनिया में इसराइल का लेन देन मुतासर होगा।
टारगेट किलिंग के बारे में क्या कहता है?
बिल्कुल वाज़ह लफ्जों में कहा कि मोसाद ने हुक्म दिया है कि ईरान के साइंसदानों और दानिशवरों की लिस्ट तैयार की जाए ताकि उनके दरमियान से जो अहम टारगेट हैं उनकी निशानदेही की जाए।
ठीक है, तो तुम तीनों शोबों के सरबराहों के लिए इस रिकॉर्डिंग की एक रिपोर्ट तैयार करो और लिखो कि इस रिपोर्ट का सोर्स मुसाद का एक खुफिया एहलकार है।
फरमाइए सर।
नासिर, सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
तुम कैसे हो?
ठीक हो सर।
अहम इत्तलात लाए हो ना?
बस क्रिसमस ने साथ दिया सर।
क्या मतलब?
हमारे सोर्स ने सिर्फ
पैसे के लिए काम नहीं किया बल्कि अपने अकीदे और नज़रिए की बुनियाद पर ऐसा किया।
नासिर, बहुत गौर से सुनो, रवानबख्श की जान की हिफाजत हमारे लिए बहुत अहम है। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा सर, आप बेफिक्र रहें।
शाबाश,
शुक्रिया सर।
काटना नहीं, काटना नहीं।
एक मिनट, काटना नहीं, ये मुस्तफ़ा को तुमसे काम है। होल्ड करो, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।
नासिर
जी सर,
एहसानपुर
ने मुझे फ़ोन किया था, कह रहा था कि रवान बख्श बहुत डर गया है। कह रहा था कि रवान बख्श के इस डर के नतीजे में कोई गड़बड़ भी हो सकती है। उससे कह दो कि जब सड़क से गुजर रहा हो तो
कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो तो गाड़ी से न उतरे।
मैं उससे कह दूंगा, तुम परेशान मत हो।
ठीक है, यहाँ खानी से मेरी बातचीत खत्म हो गई तो मैं भी रवाना हो जाऊंगा।
ठीक है, खुदा
नासिर साहब, सलाम अलैकुम। खाने के लिए क्या बनाऊं?
जो तुम्हारा दिल चाहे बना लो,
आपके लिए भी और बाकी सबके लिए।
तुम्हारी पसंद जबरदस्त है, जो चाहो बनाओ।
वही जो आपको पसंद है।
ठीक है भैया, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या सूरत हाल है?
सब कुछ कंट्रोल में है।
ठीक है, सारे कैमरों की तस्वीरें मुझे।
जी सर। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और कैमरा नंबर 3।
फटाफट ताज़ा तरीन रिपोर्ट बताओ।
जहांगीर गली के सिरे पर अलर्ट है।
मसूदी की गाड़ी भी इससे पहले वाले चौराहे पर खड़ी है।
दूसरी टीम थोड़ा फासले पर हाईवे पर तैनात है।
रवान बख्श से मुझे बात करो।
चलिए
तुमने उससे बात की, तुम्हें नहीं बताया?
नहीं, उसने हमसे मशवरा किए बगैर ऐसा क्यों किया?
उसे अपनी बीवी को उतार देना चाहिए। फौरन फोन करो उसे।
जवाब नहीं दे रहा।
उसको दोबारा फोन लगाओ।
मिल नहीं रहा।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है, फोन क्यों नहीं लग रहा है? फिर से डायल करो, जल्दी करो।
जहांगीर जवाब दो।
क्या हुआ?
तस्वीर साफ नहीं है, नॉइज भी है।
अब ठीक है?
हाँ ठीक हो गया। फोन चलने दो, काटो नहीं।
डिस्टर्ब हो जाएंगे आप।
नहीं हो सकता, उठाना पड़ेगा, मलिक का फोन है। सलाम अलैकुम मलिक साहब। जी फरमाइए।
किसने तुमसे कहा कि बीवी को गाड़ी में बिठाओ?
माफ कीजिएगा, वो मेरे साथ थी, रहना चाह रही थी।
ठीक है, वो चाह रही थी, लेकिन तुमने क्यों बिठा लिया?
क्या तुमको लगता है शॉपिंग करने जा रहे हो? खुद हमें भी अंदाजा नहीं क्या होने वाला है, उसे फौरन उतारो।
जनाब मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी।
नहीं प्लीज उतर जाओ,
जो कुछ भी होना है हो जाए।
बराए मेहरबानी आप
मुझसे बहस मत कीजिए, प्लीज आप गाड़ी से नीचे उतर जाइए और हमें अपना काम सुकून से करने दीजिए।
ऐसा लगता है कि आपको खवातीन के जज्बात के बारे में कुछ भी नहीं मालूम।
सुनिए मोहतरमा,
ये जज्बात की जगह नहीं है, जब आपसे कह रहा हूँ कि नीचे उतर जाइए तो उतर जाइए। रवान बख्श, इसी वक्त उनको गाड़ी से नीचे उतारो, मैडम को नीचे उतारो फौरन।
माफ कीजिएगा मलिक साहब, इजाजत दे दीजिए, मेरी अहलिया मेरे साथ ही रहे, मुझे उसके साथ रहना बहुत जरूरी है।
देखो मिस्टर रवान,
कोई हर्ज नहीं है, आपकी अहलिया भी आपके साथ रह सकती है।
बड़ी मेहरबानी।
फरहाद,
क्या है,
कहाँ हो?
मैं मोटरसाइकिल के पास पहुंच रहा हूँ।
तुम अपना फोन काटना नहीं, लाइन पर रहो।
मसूद,
क्या है,
कहाँ हो?
मैं बाइक के पीछे हूँ।
जहांगीर, यही पोजीशन बनाए रखो।
जहांगीर, तुम उससे अपना फासला कम करो, जल्दी करो,
जल्दी करो, उसके पास पहुंचो।
उसके पास पहुंचो। वो फायरिंग कर रहा है, फॉरन फायर करो, फॉरन फायर करो।
सर मैं चेक कर रहा हूँ कहीं उसके पास साइनाइड तो नहीं है। बहुत अच्छा हुआ अभी जिंदा है।
बहुत खूब, जबरदस्त कारकर्दगी।
हेलो,
काम हो गया, हमने उसे पकड़ लिया।
जिंदा पकड़ा?
गोली लगी है,
लेकिन उम्मीद है कि जिंदा बच जाएगा।
मैं तुम दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
हम भी तुम्हें मुबारकबाद देते हैं।
क्या इस कामयाबी के बारे में उसके साथियों को भी इत्तला दे दी जाए?
हाँ, मेरा तो मशवरा यह है कि 10-20 लोगों को इसके इस्तकबाल के लिए भेज दो।
अच्छी तजवीज़ है, अपनी बीवी के सामने बहुत खुश हो जाएगा। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
तुम इन सबको फोन करो जिनके नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
जी सर।
मैडम मुआयद, दफ्तर आते हुए रमान बर साहब को कत्ल करने की साजिश रची गई थी।
क्या?
लेकिन कामयाब नहीं हुए, वो बिल्कुल ठीक हैं। चंद मिनट में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं।
तुम्हें किसने बताया?
एहसानपुर साहब के असिस्टेंट शाकेरी ने। सबसे कहा है कि उनसे मिलने जाएं।
अच्छा तो तुम उनके इस्तकबाल के लिए जा रही हो?
तो क्या ना जाऊं?
नहीं जरूर जाओ, जाओ जल्दी जाओ।
السلام علیکم محی صاحبہ۔
السلام علیکم روان بخش صاحب۔
میں نے ابھی یہ خبر سنی ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔
بس اللہ کی مرضی تھی جو اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وائف ساتھ میں تھی تو میری خود اعتمادی بڑھ گئی۔
اپنی اہلیہ کو میرا سلام کہیے گا۔
بالکل، ذرا رکیے، میری اہلیہ آپ سے دو منٹ بات کرنا چاہتی ہیں۔ لو بات کرو، لو بات کرو، لو۔
آپ کی بڑی مہربانی میڈم کہ آپ نے رواں بخش کو فون کیا۔
شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی ادارے کے اہلکار ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فریضہ تھا کہ فون کر کے خوشی کا اظہار کروں کہ خیریت ہوئی جو یہ ٹارگٹ کلنگ ناکام ہو گئی۔ میں نے ابھی
رواں بخش صاحب سے بھی یہی بات کہی ہے۔
بہت شکریہ میڈم، آپ کی مہربانی، خدا حافظ۔
نہیں کوئی بات نہیں، خدا حافظ۔
آپ تو کہہ رہے تھے آفس میں جالے موئی سے ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے۔
میں ابھی کہہ رہا ہوں، ہم دونوں کے دفتر میں کافی فاصلہ ہے۔ ہاں اگر کبھی کوئی کانفرنس ہوئی، سیمینار ہوئی تو سب جمع ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں کانفرنس ہال میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، دو چار جملے میں احوال پرسی ہوئی، بس ختم۔
مطلب موسم گرما کے بعد سے اب تک کوئی بات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی؟
نہیں،